प्रियल दरवाजे पर खड़ी काफी देर तक निक को देखती रही, मगर फिर वो मुड़ी और वहां से जाने लगी। उसे जाते देख निक ने कहा, प्रियल इधर आना प्लीज। प्रियल सोचते हुए बोली, पता नहीं इनके करीब जाने पर एक अलग सा एहसास हो रहा है। जब से उन्होंने बताया कि ये भी मुझसे प्यार करते हैं, थोड़ी ऑकवर्ड सी फीलिंग आ रही है। क्या बात करूं अब इनसे? प्रियल अभी तक अपनी जगह से हिली नहीं थी। निक ने कहा, प्रियल शायद मैं बुला रहा हूं तुझे, आह मेरी चोट। तभी उसे जो चोट लगी थी उसकी वजह से दर्द हुआ। प्रियल दौड़कर उसके पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। निक ने प्रियल का हाथ कसकर पकड़ लिया। निक ने हाथ पकड़ते हुए कहा, डॉक्टर के पास बाद में चलेंगे, पहले बैठो यहाँ, मुझे बात करनी है तुमसे। प्रियल अपना हाथ छुड़ाकर पीछे होने की कोशिश करने लगी। मुझसे भागो तो मत, निक बोला, और अगर ऐसे ही करना था तो पहले बता देती, शायद मैंने ही तुझे बताने में जल्दबाजी कर दी, तुम इसी वजह से मुझसे दूर रह रही हो। प्रियल ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और बोली, वहां सीढ़ियों पर जाकर बैठे, वहां कोई नहीं है। निक ने कहा, चलो। निक सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। सीढ़ियों की तरफ चलते हुए उसने कहा, मुझे मेरी पहले वाली वही मिस शर्मा वापस चाहिए, जो बोलने से पहले सोचती नहीं थी और जब बोलना शुरू कर देती तो उसकी पटर पटर खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। प्रियल ने निक की तरफ देखा, फिर अपना हाथ आगे किया और उसका ध्यान भंग करते हुए बोली, कहाँ खो गए आप? निक ने कहा, खोया मैं नहीं, तुम हो। अगर तुम ऐसे अनकंफर्टेबल रहोगी तो शादी के बाद मेरे साथ कैसे रहोगी? आप करेंगे मुझसे शादी? ये क्या सवाल हुआ? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्या, जो ये सवाल पूछ रही हो? अरे नहीं, छोड़िए, हम कब करेंगे शादी? निक ने कहा, 3 साल बाद। प्रियल बोली, क्या 3 साल बाद? पर इसमें तो बहुत टाइम पड़ा है। हाँ तो तुम पहले 2 साल तक अपनी एजुकेशन और 1 साल के लिए ट्रेनिंग सेशन अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर शादी भी कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? निक ये कहकर चुप हो गया। फिर वो बोला, अच्छा अच्छा सुनो, तब तक मुझे तुमसे कुछ चाहिए, होप कि तुम ना नहीं करोगी। जल्दी से बोली, नहीं शादी से पहले नहीं, मैं इतनी ओपन लड़की नहीं हूं। निक आंखें बड़ी करते हुए बोला, व्हाट द हेल, आर यू मैड? ओ माय गुडनेस मिस शर्मा, क्या क्या सोच लेती हो तुम ना थोड़ी दूरी रहो मुझसे। प्रियल शर्मा गई, मुझे लगा आप। निक ने हंसते हुए कहा, आप ना दूरी ठीक है, चलो जाइए। फिर उसने प्रियल को हल्का सा धक्का दे दिया। प्रियल बोली, ऐसे धक्के तो मत दीजिए, अभी आई भी नहीं और पहले ही जिंदगी से भगाने की पड़ी है। ए कुछ भी, चलो नानी के पास तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, पहले पूरी बात सुन लिया करो, उसके बाद बोला करो। प्रियल सोचते हुए बोली, ये क्या बोल दिया प्रियल, अब इन्हें तो टॉपिक मिल गया मुझे परेशान करने का, तुम हर बार अपना हाथ आग में ही क्यों डालती हो? निक ने प्रियल का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती नानी के पास ले गया। सब लोग नानी के पास में बैठे थे और शादी के लिए प्लानिंग कर रहे थे। नानी दोनों को देखते हुए बोली, अरे आ जाओ बच्चों। निक ने कहा, नानी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना, मुझे आपसे कुछ परमिशन लेनी थी, क्या मैं शादी से पहले प्रियल के साथ? प्रियल बीच में ही बोली, नहीं नानी, वो मैं क्या बोल? नानी ने प्रियल को बीच में ही चुप करवा दिया, तुम चुप कर गुड़िया, उसे बोलने दो। फिर निक को बोलने के लिए कहा, बोलो बेटा निक। प्रियल धीरे से बोली, नहीं नानी, इसे कुछ मत बोलने दो। हाँ तो नानी मैं क्या बोल रहा था, निक ने भूलने का नाटक किया। यही कि तुम शादी से पहले प्रियल के साथ, नानी बोली। प्रियल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। निक ने कहा, हाँ वो मैं शादी से पहले प्रियल, प्रांजल और अर्जुन, इन सबको चंडीगढ़ ले जाना चाहता हूँ। हम लोग शॉपिंग करेंगे ना वहां पर, और शादी के लिए चर्च भी तो डेकोरेट करवाना है, इमरजेंसी बुकिंग भी करवानी पड़ेगी, ये पूरा काम मिलकर ही पॉसिबल होगा। हाँ हाँ बेटा जरूर जाओ। निक ने चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई और प्रियल को बोला, चलो प्रियल शादी से पहले क्या शॉपिंग करने चलते हैं, निक कहकर खुद में ही हंसा। प्रियल गुस्से में बाहर आ गई। वो बाहर आकर बोली, इन्हें तो बस टॉपिक चाहिए मुझे परेशान करने का, अब मैं क्या करूं, मैंने हिंदी सीरियल्स और मूवी ज्यादा देखे हैं तो उसमें तो ऐसे ही होता है यार, लड़के ने प्रपोज किया नहीं और पड़ गया लड़की के पीछे। निक पीछे से आया और प्रियल को छेड़ते हुए बोला, चले प्रियल शादी से पहले, अगर आपने मुझे परेशान किया तो मैं सच में आपकी नानी से कंप्लेन कर दूंगी, जाओ कर दो। प्रियल बोली, हाँ नानी से नहीं कर सकती तो क्या हुआ, जिनी और एम्मा को बोल दूंगी, जाओ बोल दो। चलो मैं उन्हें बुला लेता हूँ यहाँ पर, रॉन, एम्मा, जिनी, अर्जुन, प्रांजल, यहाँ आओ। उसने सभी को बुला लिया। उसके बुलाने पर सब उसके पास आ गए। अर्जुन ने आकर सबसे पहले पूछा, क्या हुआ, हमें ऐसे आवाज क्यों लगा रहे हो? निक ने कहा, प्रियल को कुछ बताना है तुम्हें, तुम सबको बताना है, कंप्लेन करनी है। प्रियल बोली, ये मुझे कब से परेशान कर रहे हैं? जिनी ने चेहरे पर नकली गुस्सा दिखाया, और तो बदले में तुम इसकी पिटाई कर दो। एम्मा ने उसका साथ देते हुए कहा, तुझसे नहीं होता तो मैं कर देती हूँ, मेरा भी कब से निक को पीटने का मन कर रहा है। निक बोला,
तुम सब के सब बंदर हो और मैं बंदरों के मुंह नहीं लगता। प्रांजल ये सुनते ही बोली, ये क्या लगा रखा है, बंदरों के मुंह नहीं लगता, हम बंदर और तुम, भूल तुम रहे हो, हमारे पूर्वज बंदर ही थे। निक ने उसकी तरफ देखकर आंखें हिचकाई और कहा, तुम्हारे वाले होंगे, मेरे तो नहीं थे। अर्जुन सोचते हुए बोला, वैसे ये बंदर बंदर क्यों बोलता रहता है सबको, मैं सुबह से कई बार इसके मुंह से ये वाली लाइन सुन चुका हूँ। एम्मा उसकी तरफ हुई, मैं बताती हूँ, जब हम छोटे थे तो हमारे पास में एक छोटा सा पेट मंकी था, पर जब वो जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ वो सबको काटने लगा, तो पावती आंटी ने उसको जंगल में भेज दिया, और हम लोग बच्चे थे तो बहुत उदास थे, तो आंटी ने बताया कि उनका असली घर जंगली है। हम लोग बचपन में बहुत झगड़ा करते थे, तो आंटी ने हमसे बोला कि तुम लोग भी ऐसे बंदरों की तरह झगड़ते रहते हो, तो तुम लोगों को भी एक दिन जंगलों में छोड़ना पड़ेगा, तब से ये बंदर हम सबको बंदर बोलता है। निक ने ये सुनकर अपने कंधे उचकाए और एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, पता नहीं मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके भाई बहन ऐसे बंदर जैसे क्यों होते हैं, जब देखो काटने को दौड़ते हैं। प्रांजल निक को जीभ दिखाते हुए बोली, इसे तो सच में काट ही लेना चाहिए किसी दिन। सब एक दूसरे से मजाकिया अंदाज में बात कर रहे थे। पीएल ने चुटकी लेते हुए कहा, प्लीज शादी से पहले तो मत काटना। निक ने ये सुनते ही उसकी चुटकी ली और बोला, हाँ शादी के बाद तो ये काटेगी ना, या फिर शादी से पहले, देखो फिर छेड़ रहे हो मुझे, कुछ बोल भी नहीं सकती इनको। इतने में नानी ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, जाओ बच्चों लेट हो जाएगी, फिर कब शॉपिंग करोगे। सबने कहा और फिर सबके सब चंडीगढ़ चले गए। सब लोगों ने चंडीगढ़ में खूब सारी शॉपिंग की और चर्च की भी इमरजेंसी बुकिंग कर ली। अब बस वेडिंग ड्रेस ही बची थी जो उन्हें अभी भी खरीदनी थी। निक ने कहा, होप यहाँ चंडीगढ़ में कोई बेटर कलेक्शन मिल जाए। अर्जुन इस बारे में सोचते हुए बोला, अरे यहाँ पर बेस्ट बुटीक है, तुमने नहीं सुना कभी डिजाइंस या आरफ खुराना का नाम सुना क्या, वो यहाँ की सबसे बेस्ट वेडिंग ड्रेस डिजाइन करने के लिए जाना जाता है, उसकी कंपनी है द डिजाइंस। निक को ये नाम सुनते ही जैसे कुछ याद आया, ओ माय गॉड द डिजाइंस, आरफ खुराना, अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, उसने यूएसए से ही तो डिजाइनिंग कोर्स किया है। रॉन को भी इस बारे में याद आया, वो बोला, हाँ ये अकेला है जो शायद हमारा कॉमन फ्रेंड नहीं है, सिर्फ निक का फ्रेंड है, चलो फिर चलते हैं डिजाइंस, निक ने मुस्कुराते हुए कहा।
सब मिलकर दी डिजाइंस कंपनी की ओर चल दिए जहां उन्हें आरफ खुराना से मुलाकात करनी थी। सभी आरफ खुराना की कंपनी पहुंचे। आरफ ने वहां निक को देखा, निक को देखते ही वो उसके गले लग गया। निक ने उससे पूछा, कैसे हो तुम? आरफ ने कंपनी की तरफ इशारा किया और बोला, बस देख लो चल रहा है, तुम लोग यहां चंडीगढ़ ने कैसे, वो भी शॉपिंग के लिए, उसने सभी के हाथ में शॉपिंग वाले बैग देखे। जिनी ने इसका जवाब दिया, हम लोग शादी कर रहे हैं कल, हम शादी में वेडिंग कलेक्शन के लिए आपके पास आए हैं, आप हमें अपना बेस्ट वेडिंग कलेक्शन दिखाइए। आरफ ने खुशी के साथ कहा, हाँ क्यों नहीं, आप लोग कलेक्शन देखिए, ऊपर का पूरा हॉल वेडिंग कलेक्शन से भरा पड़ा है, तब तक मैं और निक थोड़ी बात कर लेते हैं, आपको कलेक्शन दिखाने में मेरी गर्लफ्रेंड माहिरा मदद कर देगी। माहिरा वहीं पास खड़ी थी, उसने वहां से खड़े होते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। निक उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर हैरान हुआ, ओहो गर्लफ्रेंड एंड ऑल, वो आरफ से बोला। आरफ मुस्कुराया और फिर दोनों बात करने के लिए ऑफिस रूम में चले गए, जबकि माहिरा उन्हें वेडिंग कलेक्शन दिखाने के लिए चली गई। आरव अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मेरा तो ठीक है, पर तुम किसके साथ हो आजकल? ओ सॉरी भूल गया, मैं तो, तुझे तो एली के अलावा किसी और से प्यार हो ही नहीं सकता, उसने अपने को कुर्सी की तरफ हिसाब कर बैठने के लिए कहा। निक कुर्सी पर बैठा और बोला, नहीं आरव, कई बार डेस्टिनी के आगे हमारी जिद नहीं चलती है, शायद डेस्टिनी ने मेरी लव स्टोरी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ी थी, तभी मुझे प्रियल मिली और मुझे उससे प्यार हो गया, उसने आरव को अपने प्यार वाली बात बता दी। आरफ को ये सुनकर खुशी हुई, ये तो अच्छी बात है, पर मैं ये सब डेस्टिनी और प्यार में बिलीव नहीं करता हूँ। निक मुस्कुराया, कर लेगा, भले तुम बिलीव नहीं करता होगा, लेकिन तेरी डेस्टिनी में भी एक रोमांटिक सी लव स्टोरी जरूर लिखी है। आरफ हंसा और कहा, तब तो डेस्टिनी को बोलो मैं अपने न्यू कलेक्शन में बिजी हूँ, बाद में लिख। निक ने अपना सिर हिलाया, तुम भी ना, तुमने अपनी मजाक करने वाली आदत अभी भी नहीं छोड़ी। उधर चर्च में प्रांजल, प्रियल, एम्मा और अर्जुन चर्च की बुकिंग के लिए पहुंचे। वहां प्रियल आयुषा से टकरा गई। प्रियल उसे देखते ही हैरान हुई, उसने पूछा, आयुषा तुम यहां चंडीगढ़ में कैसे? आयुषा ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। वो बोली, वैसे ही जैसे तुम मुंबई से चंडीगढ़ में हो तो मैं भी मुंबई से चंडीगढ़ में आ गई। प्रांजल, अर्जुन और एम्मा भी उनके पास आ गए। प्रांजल भी आयुषा को देखकर हैरान हुई, अरे आयुषा तुम यहां, कैसी हो तुम, उसने उसे गले से लगाया। एम्मा उसके बारे में नहीं जानती थी, कौन है ये मुझे भी तो बताओ, उसने कहा। जब हम लोग मुंबई में पढ़ते थे तब हमने छुट्टियों में एक बार 2 महीने के लिए फ्लैट में रहना डिसाइड किया था, उसी समय आयुषा भी मुंबई में डिजाइनिंग की स्टडी कर रही थी, तब हम लोगों ने फ्लैट शेयर किया था, और फ्लैट शेयर किया तो फ्रेंड बन गए, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, प्रियल ने बताया। फिर वो बोली, आयुषा देखो ना डेस्टिनी कहाँ से कहाँ ले आई, एक बार फिर हमें मिलवा दिया। सच कहा है किसी ने, किस्मत में अगर किसी का मिलना लिखा हो तो उसे कोई नहीं टाल सकता। प्रांजल ने उससे पूछा, मंथन कैसा है? मैंने देखा था उसका स्टेटस, रिलेशनशिप में होना आप दोनों? मैं ये जानकर शॉक्ड हुई थी। प्रियल ने इस बात पर हैरानी दिखाई। वो आयुषा से बोली, क्या तुम मंथन के साथ रिलेशनशिप में हो? इंटरेस्टिंग। आयुषा अपने बालों को अपने कानों के पीछे किया और हल्का सा शर्माते हुए कहा, हाँ, उसने मुझे प्रपोज किया था और मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद से हम रिलेशन में हैं। एम्मा बोली, अच्छा लगना और प्यार होने में फ़र्क होता है, तुम उसे प्यार भी हो क्या? हाँ, आयुषा बोली। डेस्टिनी में हम दोनों का साथ लिखा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रियल बोली, और डेस्टिनी कब बदल जाए उसका क्या पता चलता है? आयुषा ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, ये तो गॉड नोज, उनके माइंड में क्या चल रहा है कौन समझ सकता है, और अब मंथन और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। चलो अच्छा है, प्रियल ने कहा, चलो चर्च चलते हैं। उसने सभी को चर्च जाने के लिए कहा। सभी चर्च के लिए निकल गए। आयुषा प्रियल, प्रांजल और एम्मा से मिलकर वापस चली गई। उधर निक, जिनी, रॉन और अर्जुन भी आरफ खुराना के बुटीक से शॉपिंग करके बाहर आ गए।